ओम शांति। सब्जेक्ट है कि कैसे हम अपने को प्रिपेयर करें और अच्छा डिलीवरी करें। पब्लिक स्पीकिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमें हम सभी ने सीखा है वो है पहला पॉइंट स्वस्थिति। जितनी हमारी स्वस्थिति अच्छी होगी उतना हमारा वाइब्रेशन के द्वारा लेक्चर अच्छा प्रेजेंटेशन हो। तो टोटल सीक्रेट मैं यही कहूंगा जो किसी भी प्रेजेंटेशन का हम सभी बच्चों का है वो है खुद की स्वस्थिति। जितना आप स्वरूप में रहकर दूसरों को देते हैं उसका असर उसके दिल तक पहुंचता है। तो तैयारी पहले खुद की चाहिए कि हमारी स्वस्थिति क्या है। अब आते हैं इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्लानिंग। पहले आप इसकी प्लानिंग करो। इसके तीन पोर्शन है, प्रिपरेशन पहला, दूसरा पॉलिशिंग, तीसरा प्रेजेंटेशन। तीन पी हैं, प्रिपरेशन पॉलिशिंग एंड प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन यानी आपकी तैयारी, पॉलिशिंग यानी उसको रिफाइन करो, जो बाबा कहता है महीनता में ही महानता है, और तीसरा है आपका एक्चुअल प्रेजेंटेशन डिलीवरी। अब प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन का अर्थ ये नहीं है कि केवल मटेरियल इकट्ठा करना है, क्योंकि जो मेजर ड्रॉबैक मैंने देखा ज्यादातर बहनें और भाई मटेरियल ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं और उसके कारण उनका जो नेचुरल डिलीवरी सिस्टम है वो अफेक्टेड हो जाता है। करिए मटेरियल इकट्ठा करिए, केवल नोट डाउन नहीं करना है और केवल रटना नहीं है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कई भाई बहन रट लेते हैं कुछ अच्छी चीजें, कविताएं, कोटेशन, केवल इतना ही नहीं है, वो करना है। पर इसके साथ साथ क्या करना है, सबसे बड़ी चीज है योर स्पीच शुड बी इनोवेटिव। इनोवेटिव यानी जितना आप अंदर से बोलेंगे, क्योंकि अगर आपने खुद तैयार किया है तो वो लेक्चर ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इंस्पायरिंग, इनोवेटिव, इंस्पायरिंग, लोगों को इंस्पायर करें। आज हम सभी जानते हैं कि लोग कमजोर हो गए हैं, लोगों में शक्ति नहीं है, तो उसको ऐसा कुछ करना है कि उसके अंदर वो भावना जागृत हो जाए। क्योंकि केवल हमें प्रसिद्धि नहीं पाना है, फेमस नहीं होना है, हमें बाबा को फेमस करना है। दूसरा सीक्रेट, पहला बोला स्वस्थिति, दूसरा ट्रेड सीक्रेट है कि हमेशा एम एंड ऑब्जेक्ट रखें कि मेरे को इसके द्वारा बाबा को प्रसिद्ध करना है, न कि खुद को प्रसिद्ध करना है। क्योंकि जहां ये शब्द आ जाता है धीरे धीरे एनर्जी डाउन होती जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। और जब हम कहते हैं कि बाबा को करना है तो हम निमित बनकर करते हैं और वो करावनहार होता है। तो इनोवेटिव, इंस्पायरिंग विथ सम इंडिविजुअलिटी, तीनों चीजें चाहिए। इनोवेटिव यानी अपना खुद का मंथन चाहिए, आपको इंस्पायर करने वाला हो, लोगों को कुछ देने वाला हो। क्योंकि आज जब व्यक्ति पहली डिमांड यही करता है कि मेरे को आपके यहाँ आने पर क्या फायदा होगा, अभी जो 21st सेंचुरी में चेंज आया है, लोग ऐसे ही नहीं आते हैं। अभी उनका ये रहता है कि मेरे को आपके यहाँ आने पर क्या फायदा होगा, चाहे हेल्थ का चाहे कोई भी फील्ड का। तो थ्योरी मॉडल खत्म हो गया। अभी तक जो हमारा अप्रोच था थ्योरी मॉडल का कि थ्योरी दो तो लॉजिक कितना भी दें लोग उससे कन्विंस नहीं होते, पर उसको आपने कुछ अनुभव करा दिया, कुछ प्राप्ति हुई तो वो नेक्स्ट डे भी आएगा। और इसमें आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी हो, ऐसा नहीं करो कि हम किसी और को कॉपी करना है। आप देखेंगे कि हम सभी लेक्चर एक दूसरे से मैटर को भी अलग रखते हैं। इंडिविजुअलिटी हमेशा मेंटेन रहे, क्योंकि कॉपी करते हैं तो उसमें हमारा नेचुरल अंदर से नहीं आता है। तो आपका जो खुद का नेचर है वो देखो, आपकी पर्सनालिटी क्या है उसको चेक करो, और किस तरह के लेक्चर मैं अच्छी तरह से दे सकता हूँ उसको सोचो। और हर एक आत्मा की अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी रहती है, और उसको अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे और उससे बोलेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जरूरी नहीं कि आप मेरे को कॉपी करो या किसी को कॉपी करो, आप अपनी कॉपी खुद बनाओ और वो कॉपी आपकी आत्मा आपको देगी, आपकी आत्मा से अंदर आवाज आएगी, और वो सब्जेक्ट पहले लेना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। तो प्रिपरेशन हमारी इनोवेटिव हो, इंस्पायरिंग हो, इग्नाइटिंग हो और इंडिविजुअलिटी हो, चार आए, चारों चीजें उसमें हमारी होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट आप ऐसा लो जो आपको शुरू में अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर ऑलरेडी करा रहे हैं सेवा तो कोई बात नहीं, पर शुरू में अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो सब्जेक्ट ऐसा लो जो आपको कंफर्टेबल हो, और उसके ऊपर सोचना चालू करो, उसके ऊपर मंथन करना शुरू कर दो, और फिर पॉसिबल क्वेश्चंस भी अपने आप से पूछो कि लोग क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस सब्जेक्ट पर, और फिर मटेरियल को अरेंज करो। सबसे इंपॉर्टेंट फिर नेक्स्ट फैक्टर रहता है, इंफॉर्मेशन आपने ली, सोचा, मंथन किया, और फिर है उसको शेप देना, सिंथेसाइज करना। क्योंकि जब हम पब्लिक में जाते हैं आपका मेंटल क्लियरिटी बिल्कुल चाहिए। तीसरा फैक्टर ऑफ सक्सेस मैं कहूंगा, आपका उस सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। जैसे आत्मा का लेसन हमें देना है, अगर आत्मा की क्लियरिटी नहीं है लेसन की, मन बुद्धि संस्कार कैसे काम कर रहे हैं, आत्मा के सात गुण कैसे काम कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट की क्लियरिटी आपके माइंड में पूरी होना चाहिए। अगर मेंटल क्लियरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं ब्लॉक आएगा, थ्योरी तो पढ़ लिया पर मेंटल क्लियरिटी नहीं है, तो उस सब्जेक्ट की मेंटल क्लियरिटी को अपने में देखिए, उसको सिंथेसाइज करिए कि आपको लगता है कि अब मेरे डाउट्स इस सब्जेक्ट के ऊपर खत्म हो गए और मैं अब इसको कमांड से करा सकता हूं। तो उस लेसन को बहुत अच्छी तरह पढ़िए, और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो भी, जो सभी लेक्चर्स का फाउंडेशन है, वो है पहला लेसन, आत्मा वाला लेसन। जिसका आत्मा का लेसन क्लियर होगा वो सब लेक्चर्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड सीक्रेट ही टोटल चीज ही, थीम ही है हमारा पहला लेसन, और उससे ही सब लेसन जुड़े हुए हैं, चाहे हेल्थ के, चाहे मैनेजमेंट के, चाहे किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, वो फर्स्ट लेसन से जुड़े हुए हैं। इसलिए फर्स्ट लेसन को अच्छी तरह पढ़कर उसके जितना भी मैटर आपको डिफरेंट ऑथर से मिलता है उसको पढ़िए, और फिर उसको सिंथेसाइज करिए। अब जब आप नेक्स्ट स्टेज आती है पॉलिशिंग, पहली हो गई प्रिपरेशन, दूसरी हो गई पॉलिशिंग। अब आपका जब ड्राफ्ट तैयार हो जाए, मैटर तैयार हो जाए, फिर से रिवाइज करिए या किसी को सुनाइए, और जो आपको अच्छा नहीं लगता है या किसी ने कहा ये शब्द ठीक नहीं है उसको निकाल दीजिए, और कुछ नया जोड़िए अगर आपको लगता है कि ये अभी ये पॉइंट मेरा वीक है। तो मुख्य चीज आ गई प्रिपरेशन में, आप अपना सब्जेक्ट को अच्छी तरह तैयार करिए, प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप होती है ऑडियंस को, पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑडियंस आपके सामने है। हमेशा बहनों से पहले पूछिए, फैक्ट्री है, कॉलेज है, यंगस्टर्स हैं, पहले से ही आप पता कर लीजिए कि आपके सामने क्राउड क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है कि क्राउड आपके सामने कौन सा बैठा है, और उसके अनुसार आपको अपना लेक्चर को टर्न एंड ट्विस्ट करना पड़ता है। नॉलेज वही देना है पर हमें उसको सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि आपके सामने बहुत इंटेलेक्चुअल क्राउड बैठा है और आप जानते हैं कि इनका ईगो लेवल बहुत है, तो आप उसको थोड़ा और अच्छा सिंथेसाइज करके अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, और हो सकता है एक क्राउड में आपको कभी कभी मिक्स क्राउड मिलता है। जैसे ज्यादातर हमारे सामने या यहाँ जो क्लासेस चलते हैं नीचे, उसमें मिक्स क्राउड रहता है। कुछ माताएं रहती है सिंपल, कुछ अच्छे जानकार रहते हैं, कुछ मीडियम रहते हैं, तीनों लेवल रहती है ज्यादातर अपने नीचे वाली क्लासेस में। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि तीनों लेवल को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि कुछ माताओं को मिल जाए, कुछ इंटेलेक्चुअल्स को मिल जाए और कुछ मीडियम वालों को मिल जाए, तो तीनों को मिक्स करना पड़ता है। ये बहुत कम होता है कि आपको एक ही लेवल मिले, वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज और कॉलेजेस में होती है, पर यहाँ की गैदरिंग जो स्पिरिचुअल होती है वो तीन तरह की रहती है। ऊपर जो शिविर चलते हैं उसमें भी बहुत टाइम मिक्स क्राउड ही रहता है, एक हाई लेवल एक लो लेवल, तो आपको देखना पड़ता है कि क्राउड किस तरह का है और उसके अनुसार आपको सिंपल मीडियम हाई लेवल मिक्स करनी पड़ती है। अब होता क्या है कि जो बहुत इंटेलेक्चुअल क्राउड रहता है, जिसका ईगो लेवल 100% रहता है, तो उनको थोड़ी चीजें ऐसी देना पड़ती है चाहे उनको समझ में नहीं आए। 10% 15% 20% आप ऐसी चीजें बोलो जो उनको नहीं मालूम, तो उससे क्या होता है, उसका ईगो सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे इसका क्लाइंटेज डॉक्टर दीपक चोपड़ा का क्या है, टोटल हाई लेवल का क्राउड है, उसका अमेरिकन क्राउड है, हाई सेलिब्रिटीज हैं, तो उसके जो लेक्चर्स भी हैं उसी लेवल के हैं। एक नॉर्मल मीडियम लेवल को समझ में नहीं आएगा। इस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ कि 20-25% डॉक्टर्स ने कहा हमारे ऊपर से गया, तो वो गया तो अच्छा है, क्योंकि जितना ऊपर से गया वो इंटेलेक्चुअल कहेगा बहुत अच्छा था। अब आपके सामने फिर सिंपल माताएं सिंपल लोग हैं, तो उनसे रिलेटेड भी मैटर आप उनको दो, जिससे कि माताएं भी या वो सिंपल क्राउड भी मोटिवेट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेट लेक्चर का एम यही रहता है कि हमें उनको मोटिवेट करना है, उनके अंदर का खुद का सोच शुरू कर देना है, इग्नाइट कर देना है, जो मैंने कहा इग्नाइट कर देना है। क्योंकि हमारे को बाबा ने सिखाया कि हम किसी को अपने ऊपर डिपेंड न कराएं, हम उसको उसका ही लीडर बना दें। उसके अंदर अगर जब चेतना शक्ति जागृत हो जाएगी, वो व्यक्ति लाइफ में खुद खड़ा हो जाएगा। लेक्चर का मेन थीम यही रहता है कि उसके अंदर डिप्रेशन है, निराशा है, चिंता है, उसको हम ठीक कर दें। तो ऑडियंस को पहले से ही समझिए और ऑडियंस को पहले से ही पता कर लीजिए कि आपके सामने कौन सा ऑडियंस है, फिर अपने प्लान के अनुसार चलिए। नेक्स्ट है, हमेशा टाइम को फॉलो करिए। जो टाइम आपने पब्लिक को दिया है या उन्होंने आपको दिया है, उसको 100% फॉलो करिए, जहां तक हो सके फॉलो करिए। यानी अगर मेरे को कंपनी में टाइम दिया है 12 से 1, तो मैं वहां पहले से ही पहुंच जाऊं, जहां तक हो सके आधा घंटा पहले ही पहुंच जाऊं, जिससे कि आपके अंदर का जो एंजाइटी मैकेनिज्म है वो कम हो जाए। आपने चेक कर लिया सब सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं, माइक, प्रेजेंटेशन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, जिससे भी आपको दिखाना है पहले जाके चेक कर लो, क्योंकि होता है जर्नली कि टेक्निकल मिस्टेक्स हर जगह होती है। अभी जैसे मैं पूना गया, लैपटॉप लेके गया, और लैपटॉप से जैसे एलसी हमने सोचा हो जाएगा, तो एलसीडी पे लगाया तो एलसीडी पे हो ही नहीं रहा था, कुछ प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम था। तो आपकी नेक्स्ट प्रिपरेशन भी तैयार रहना चाहिए कि अगर ये मेथड काम नहीं करे तो मेरी दूसरी मेथड काम करे, उस समय स्ट्रेस नहीं आ जाए कि एलसीडी नहीं चल रहा अब क्या होगा। आपका मेंटल प्रिपरेशन क्लियर होगा तो आप एक्स टेम्पो भी लेक्चर दे सकते हैं। मुझे एक्स टेम्पो उस दिन एक घंटा बोलना पड़ा, तो सब्जेक्ट आपका पहले से ही तैयार हो, टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, लाइट चले जाए, तो आप डिलीवरी आपका ठीक हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करें, पर टेक्नोलॉजी के डिपेंडेंट न बन जाए कि टेक्नोलॉजी नहीं चली, क्योंकि हम देखते हैं ऊपर कई बार कई डॉक्टर्स लेके आते हैं अपनी सीडीज और नहीं चलती तो बहुत पसीना पसीना हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके बिना वो डिलीवरी नहीं कर सकते। पर बाबा ने हमें जो सिखाया है कि हमारा अंदर का मैकेनिज्म हमेशा काम करता रहे, नेचुरल मैकेनिज्म काम करेगा तो आपका डिलीवरी अच्छा होगा। तो टाइम को पूरा अच्छी तरह फॉलो करें। आपको 12 to 1 दिया है, 12 स्टार्ट करें, 1 को खत्म कर दें। चाहे उसके बाद वो लोग बोले भी कि हमारे पास टाइम है, तो आप मत करिए, उससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। जो मैंने बताया अभी कि गए थे अदरानी, ये मुंद्रा अदरानी पोर्ट में, वो जो बताया मैंने एचआरडी बोट था और लेक्चर के बाद बहुत ठंडा हो गया। उसने कहा कल हमारी लेडीज का हम प्रोग्राम रखते हैं, जो मेरे लिस्ट में नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। चाहे मेरे पास टाइम था, पर मैंने कहा टाइम नहीं है। तो इससे क्या होता, आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है। हम ऐसे ही लेक्चर देने चले जाते हैं, फ्री करते हैं, तो लोग समझते हैं इनको जरूरत है। पर अभी जब हमारे पास पूरा कमांड एंड कंट्रोल आ गया है, तो अपनी वैल्यू को अपने साथ रखो और कभी भी टाइम को खींचो मत। जो ज्यादा कंप्लेन आती है पब्लिक से हमारे पास कि ब्रह्मा कुमारी वाले टाइम मैनेज नहीं करते हैं, तो हमेशा टाइम को मैनेज करिए। फंडामेंटल रूल, जो टाइम दिया है 10 लोग आ गए हैं, 10 लोग से स्टार्ट कर दो। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, चाहे प्रेसिडेंट आने वाला है, अगर आपको बोला गया है तो आप स्टार्ट कर दो। और मेरे हाथ में तो जहां रहता है प्रोग्राम, अगर मेरे को देना है तो मैं तो शुरू कर देता हूं और उसी समय खत्म कर दो। जो समय दिया गया है उस समय डॉट खत्म कर दो, जिससे कि जो व्यक्ति अपना टाइम लेकर आया है, उसको अपने ऑफिस में जाना है या हॉस्पिटल में जाना है, वो जा पाएगा। हमने जहां खींचा आधा घंटा इससे मिलवा लो और कर लो, तो 10 लोगों को स्ट्रेस आ जाता है और मेजर फेल्योर इसी से होता है कि इंटेलेक्चुअल फिर आना बंद कर देता है। एक प्रोग्राम में अगर उसने देखा आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो उसके कॉन्शियसनेस में, सब कॉन्शियस में चला जाता है कि ब्रह्मा कुमारी वाले टाइम मैनेज नहीं करते हैं। तो इसी में हमेशा आप बहनों को भी रिक्वेस्ट करो जो आपकी टीचर्स हैं, और जब आपके हाथ में है उसको पूरा फॉलो करो, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत जाता है। और जब कोर्स भी कराओ और शिविर भी कराओ, उसमें भी टाइम को फॉलो करो। कोर्स भी कराते हो, आधा घंटा कोर्स कराया, आधा घंटे का लेसन है, आधा घंटा दिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी लोगों के पास समय कम है बेचारे, क्योंकि उनको अर्निंग करना है, मेहनत करना है, जॉब पे जाना है, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, लेडीज हैं, तो उनको अपने घर पे जाके काम करना है, तो कभी भी सेंटर पे हम खींचे नहीं। कई जगह मेरे को यही कंप्लेन आती मेजोरिटी, एक माता आपको बताता हूँ, सहारनपुर गया, 65 ईयर ओल्ड है, वो पब्लिक प्रोग्राम में आई थी और उसने 1.5 घंटे में हमने जो समय था खत्म किया, तो वो माता आई कि आपके यहाँ आपने तो आज बहुत अच्छा समय पे खत्म किया, पर मैं जब आपके सेंटर जाती हूँ वहाँ कभी इतना लंबा लंबा चलता रहता है कि मेरे को बच्चों को देखूं कि आपके सेंटर पे बैठे रहूं। तो देखो 65 ईयर ओल्ड माता, उसको भी अपने समय का ध्यान रखना है। तो सेंटर्स पे भी समय को अच्छी तरह मैनेज करो, भोग लगाना है, कितना गीत बजाना है, पूरा मैनेज करो, तब जाके इंटेलेक्चुअल क्राउड जुड़ेगा। तो समय का मैनेज करें, और जब मौका मिले कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाते जाओ, अपनी कम्युनिकेशन वो है उसको कराते जाओ। स्पीच में कभी भी अनवांटेड शब्दों का यूज ना करो। जो मेजर फेल्यूअर होता है, फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है, हम अनवांटेड शब्द काफी यूज करते हैं, या नेगेटिव चीजों को हाईलाइट नहीं करो। जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि लेक्चर के समय, पब्लिक प्रोग्राम के समय हम किसी भी धर्म, राजनीति, कल्ट, किसी की फीलिंग को हर्ट ना करें, चाहे वो कैसा भी करप्टेड व्यक्ति है या करप्टेड प्रोफेशन है, हम किसी के प्रोफेशन के बारे में ना बोलें। हमारा मेन है पॉजिटिव बोलना है, क्या डिलीवरी करना है। क्योंकि एक जगह मैनेजमेंट का प्रोग्राम था और वहां सब टॉप लोग बैठे हुए थे। एक्स ने शुरू किया, जैसे उसको ट्रेन किया गया था, उसने नेगेटिव से शुरू किया, सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड, आज दुनिया की हालत क्या है। 40 मिनट तक वो उसी सिनेरियो पे चलता रहा तो सब लोग खड़े हो गए और उन्होंने यही कहा कि आप हमें क्या सिखाने आए हो, ये तो हमें भी मालूम है कि वर्ल्ड में क्या हालत है। और लंच के बाद टोटल क्राउड खत्म हो गया, जबकि बहुत एक्स काफी सीनियर व्यक्ति था। तो इसीलिए अब के समय में 21वीं सदी में नेगेटिव सिनेरियो सुनाने का बिल्कुल खत्म कर दो, कहीं नहीं बोलना है। वो हैबिट ही खत्म कर दो कि हम कहीं भी ये शब्द यूज करें, क्योंकि अगर माइंड में होता है तो हम लोग बहुत जल्दी इमोशनली चार्ज हो जाते हैं और खूब उसके ऊपर हाईलाइट करते हैं। चाहे मुरली भी पढ़ो, मुरली पढ़ने का भी तरीका इतना सॉलिड होना चाहिए, इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि स्टूडेंट्स में एनर्जी आ जाए। उसमें भी वो चीजें हाईलाइट नहीं करें जो कि अनवांटेड किसी भी फीलिंग्स को हर्ट करता है। जैसे एक जगह का बताता हूं, कैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग कर लेते हैं। जेल में गए और जेल में मुरली चलती थी, 3 महीने से 1 साल से मुरली चल रही है। अब जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, एक इंजीनियर खड़ा हुआ और वो कहता है कि 9 महीने से मैं जेल में बंद हूं और मेरी केस अभी तक खुला नहीं है और मैंने कोई गलती नहीं की है और उसके कारण जेल में हूं, और आपकी बहनें रोज आके पढ़ती हैं, 5000 वर्ष ऐसे हुआ था और फिर ऐसे ही होगा, तो इससे मेरे को बहुत अंदर फीलिंग आती है कि मैंने कोई गलती नहीं की, अभी भी मैं जेल में रहूंगा और अगले 5000 वर्ष भी रहूंगा, क्योंकि वो बहन हाईलाइट वही करती थी। तो अब आप जब जेल में जा रहे हो, आपको पता है कि सामने जेल के कैदी हैं, या दूसरा उसने बोला कि बोलते हैं ये आपके कर्मों का रिजल्ट है। जैसे ये बहन ने, शिल्पा अल्पा ने बहुत अच्छी चीज कही कि बीमारी कोई कर्मों का, हम उसको हाईलाइट ना करें, वो लेसन वहां देने की जरूरत नहीं है। उस बीमारी को जैसे उसने बताया कि आपके लाइफ को चेंज करने के लिए बीमारी आई है, तो ऐसा हम उसको सॉलिड पॉजिटिव से दूर हैं, वहां ठोक ठोक के उनको बोलें ये कर्मा की फिलॉसफी है, बेचारा और खत्म हो जाएगा। तो कहां कौन सा लेसन देना है ये हमें जरूर आना चाहिए, ये ही ट्रेड सीक्रेट है, गलती यहीं से होती है। अगर हम उस समय उनको खुशी के पॉइंट्स देते हैं, जेल में है, उसको 6 महीने काटना है, बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो कैसे वो 7 दिन हम उसके अच्छे बनाएं, बजाय हमारे अंदर जो फिलॉसफी हमने चार्ज की हुई है कि डिलीवरी करना है, कैसे भी डिलीवरी करना है, म्यूजियम समझने आया है, जो सब 5 दिन का 1 दिन में समझा दें, तो लोग रिजेक्ट करेंगे। इसीलिए कंप्लेन आती है कि आपकी फिलॉसफी क्या है हमें क्लियर ही नहीं है, क्या कर रही है ब्रह्मा कुमारी क्लियर ही नहीं है, क्योंकि हम कभी कभी ओवर चार्ज करने की सोचते हैं कि उसको 1 दिन में ही ब्रह्मा कुमार बना दें या 1 घंटे में बना दें। तो इसीलिए कभी जल्दीबाजी न करें और प्रॉपर शब्दों का यूज करें, कौन सा पॉइंट हाईलाइट करना है कौन सा नहीं करना है मेरे हाथ में। और कई बहनों ने बहुत अच्छा किया है, आजकल 4 पेज की मुरली को वो पहले से पढ़ पढ़ के 1 पेज का पॉजिटिव निकाल के लोगों को देती है। और जो बाबा ने कहा कि 1 पॉइंट को अगर हम हाईलाइट करते हैं, 1 चीज को हाईलाइट करते हैं, तो वो माइंड में ज्यादा जाती है। अगर बहुत चीजें देने की कोशिश करते हैं तो वो जाएगी नहीं। इसीलिए जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं, एंड ऑफ द डे कुछ क्लियर ही नहीं कि क्या बोला, 6 स्पीकर ने 6 ने अलग अलग चीजें बोली, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि क्लियर ही नहीं कि क्या है आत्मा। इसीलिए जरूरी है कि आज के जो प्रोग्राम्स हम करें, समय को देखते हुए एक टॉपिक को लेकर उसको ही जोड़ते जोड़ते बोलते जाएं, उसी को बोलें, अलग से ना बोलें। जैसे अभी रिसेंटली हम जे हॉस्पिटल गए थे तो उषा बहन आत्मा के ऊपर बोलती थी, उसके पहले मैं बोलता था कि आत्मा का इम्पोर्टेंस क्या है, या उसने पहले बोला तो मैं उसी टॉपिक को इनलार्ज करता था, न कि दूसरा टॉपिक बोले। तो उससे क्या होता है कि उसकी सिंथेसिस अच्छा चलती है माइंड की, और जब सिंथेसिस अच्छा चलती है तो वो एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। नहीं तो मल्टीपल पॉइंट्स दें हम, 50 पॉइंट्स दे दें तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो वो जरूर यूज करें कि कौन से शब्द बोलना है, कौन से शब्द नहीं बोलना है। जो अनवांटेड शब्द हैं उसको कम से कम करते जाएं। अब आते हैं स्पीच के ऊपर। स्पीच के भी तीन पोर्शन है, इंट्रोडक्शन, बीच का पोर्शन और कंक्लूजन। सैंडविच जैसा हो गया, सैंडविच ऊपर वाली ब्रेड, बीच में मटेरियल बॉडी, और नीचे की ब्रेड कंक्लूजन। तो स्पीच के तीन पोर्शन रहते हैं, कैसे इन तीन को हम करें। माइक को भी हमेशा उतनी दूरी पर रखें जितना आपका साउंड खुद का है। कभी कभी हम माइक को बहुत तेज पास में रख देते हैं, कभी बहुत दूर रहता है। एक डिस्टेंस पहले से ही देख लें कि उस माइक की कैपेसिटी क्या है। हर माइक की कैपेसिटी अलग अलग रहती है। बहुत अच्छे पावरफुल माइक रहते हैं, कोई कमजोर होते हैं। जैसे गीत गाने वाले थोड़ा पास से करेंगे, कमेंट्री कराना है तो थोड़ा पास से करेंगे। तो ये सिस्टम भी पहले से ही देखें, ऐसे ही खड़े नहीं हो जाए। माइक की हाइट को देखें, कितनी हाइट है आपकी, उसके अनुसार पहले से फिक्स करें। जल्दी नहीं करें, फिर लोगों को सुनाई नहीं देगा तो फिर से उसको ठीक करना पड़ता है। तो माइक का रेंज भी देखें और माइक की हाइट को भी देखें, और उसके अनुसार आप अपनी पिच को डिलीवरी करें। आप देखते हैं ये बोलने वाला यंत्र कहाँ लगा है, बीच में लगा है। लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड कहाँ है, यहाँ है। इसकी दूरी हेड से और इसकी दूरी हार्ट से कितनी है, इक्वल है। दिमाग और दिल दोनों के बीच में लगा हुआ है। तो हमारी स्पीच कैसी होना चाहिए, दोनों का बैलेंस। बहुत दिमाग वाली स्पीच भी फेल हो जाती है, और बहुत दिल से भी बोलो तो फेल होती है। ना इमोशनल होना है ना लॉजिकल होना है, दोनों के बैलेंस से कहां लॉजिकल बोलना है, कहां इमोशनल बोलना। जहां कमेंट्री करानी है दिल से कराओ, फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं लॉजिकल जाओ। तो दोनों के बैलेंस से जाओ, क्योंकि हमारे भाई बहन जो मिस्टेक करते हैं कभी कभी ओवर इमोशनली हो जाते हैं, तो तब वहां मिस्टेक होती है, गलतियां चालू हो जाती है। जैसे एक जगह गया तो वो भाई ने कहा राजयोगा से सब बीमारियां ठीक हो जाती है। अब एक डॉक्टर थी, उसके बारे में बोल दिया कार्डियक सर्जन है, जबकि वो थी नहीं। तो क्या हुआ, गलती कहां हुई, ओवर इमोशनल। तो कभी भी पब्लिक में ओवर स्टेटमेंट नहीं देने हैं, चाहे हमारे पास जब तक डेट्स फैक्ट्स फिगर्स नहीं है, डेटाज नहीं है, तो कोई भी चीज हम ओवर वो न दें कि हमारे राजयोगा से और कुछ नहीं करना है, आपको केवल राजयोग सीखना है, इससे आपका हृदय ठीक हो जाएगा। अब उसको वॉल्यूलर प्रॉब्लम है और कोरोनरी ब्लॉक नहीं है, पर उसने समझा नहीं ब्लॉक और वॉल्यूलर में क्या प्रॉब्लम है, यहां सुन लिया और जैकेट बोल दिया। तो वॉल का तो प्रॉब्लम अपना है, ब्लॉक का प्रॉब्लम अपना है, वो तब आएगा कि जब आप अपना बैलेंस न खोए। तो बैलेंस को हमेशा बना के रखें, ओवर स्टेटमेंट ना दें या अंडर स्टेटमेंट ना दें। जो जैसा स्टेटमेंट है उतना ही दीजिए, कि हमारी मेडिटेशन से कई बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है। दवाई भी लेना है, पर दवाई के साथ अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे तो दवाई का असर बेटर आएगा। तो इससे आपसे डॉक्टर भी जुड़ेंगे, नहीं तो डॉक्टर लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। और जबकि हमें सभी को मालूम है आज कलयुग में हर एक का जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि किसी को भी बीमारी हो सकती, चाहे हमारे स्टूडेंट हैं चाहे बाहर वाले हैं, बीमारी का पैटर्न सेम है। हमारे स्टूडेंट में भी सेम है, बाहर की दुनिया में भी सेम है। पर क्या असर है कि हमारे मेडिटेशन से हम अपनी बीमारी को जल्दी हील कर सकते हैं। तो ओवर स्टेटमेंट न दें। कभी भी ऐसा ना सोचे कि मैं इनको पढ़ाने आया हूं, डंडा लेके नहीं खड़ा हूं। वो डंडे वाली टीचिंग अभी खत्म हो गई कि मैं टीचर आप स्टूडेंट, पिटाई करने नहीं आए हैं। क्योंकि ज्यादा मॉडल फेल क्यों हुए गुरुओं के, गुरु लोग आए, लोग पूछते हैं ना कि बहुत क्वेश्चन, इतने गुरु हो गए फिर भी इंडिया में सुधार नहीं आया, इतने धर्म है फिर भी इंडिया में सुधार नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा मॉडल जो था गुरुओं का वो क्या था, वन साइडेड था। गुरु सुना रहा है, सुनो सुनो 8 घंटे, और पिटाई करे जा रहा है पाप पुण्य भविष्य ये, तो लोग आज रिजेक्ट कर रहे हैं। मुझे आप जब तक प्रेजेंट को ठीक नहीं करोगे तो मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरा फ्यूचर क्या हैगा। और पाप और पुण्य पे इतनी पिटाई करी कि लोग पहले से डरे हुए थे और कमजोर हो गए। हमारा क्या है, हम उनको चार्ज करें, बजाय उनको पाप पुण्य के इतना हाईलाइट करें और डरे वो, उसके बजाय उनमें शक्ति भरें, उनमें गुण भरें, तब वो हमारे साथ जुड़ते हैंगे। तो कभी भी वो मॉडल को लेके न चढ़े कि हम इनको सुधारने आए, शेयर करने आए। मैं जो भी आपके सामने आया हूँ शेयर करने आया हूँ, मैं अपना अनुभव बताने वाला हूँ। इसीलिए अमेरिकन टीवी चैनल में वही सबसे ज्यादा चैनल चलते हैं जो शेयर वाले चैनल होते हैं। जो वन साइडेड चैनल होते हैं वहां वो पॉपुलर नहीं होते हैं। और अभी हमारा मॉडल भी ऐसा ही होना चाहिए कि चाहे मुरली भी पढ़े, मुरली में भी ऐसा ना हो कि मैं टीचर हूं और डंडा लेके बैठ जाऊं और इनको सुधारना है। मुरली में भी मैं ऐसा पढ़ूं कि उनको अंदर तक जाए। चाहे आपने एक पेज पढ़ा पर उससे हम उनको दे सके, शक्ति दे सके, न कि नॉलेज देना है। गलती यही होती है कि हम 2 घंटे का प्रिपेयर होके आते हैं, मैंने आत्मा का लेसन 1.5 घंटे में देना है और 10 कहानियां याद की है, 10 कहानी डिलीवरी करना है। अब होता क्या है, 1.5 घंटा खत्म हो जाता है, फिर एक गीत बजा देते हैं और खत्म हो गया। 3 दिन के बाद लोग पूछते हैं मेडिटेशन क्या है, समझ में नहीं आया। क्योंकि हमने डिलीवरी जो सोचते हैं कि मेरे अंदर जो है पूरा खाली कर दूं। अब ये आपके ऊपर है कि 1.5 घंटे में एक कहानी सुनाने से आपका मैसेज क्लियर होता है, तो एक ही सुनाइए, बाकी मत सुनाइए। उस 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप 1 घंटा बोलिए, आधा घंटा उनको अनुभूति कराइए। जैसे कल भी जो टाइम मुझे दिया गया था 5:30 से 6:30, 40 मिनट बोल के 20 मिनट उनको अनुभूति कराई। छोरी तो कितना भी बोल ले पर परिवर्तन नहीं आएगा जब तक उसका अंदर का ब्रेन का नेटवर्क काम नहीं करेगा। तालियां तो बजा देंगे, लोग खुश भी हो जाएंगे, पर उससे कोई परिवर्तन नहीं आया। हम चाहते हैं वो स्टूडेंट बन जाए, बाद में जुड़ जाए। तो उसको आप कुछ ना कुछ होमवर्क भी दीजिए। जब कभी भी कंटिन्यूस शिविर कराएं या मुरली पढ़े आजकल क्लासेस में, आप स्टूडेंट को जोड़िए, उनको कुछ करने को काम दीजिए, जिससे कि वो अपना चिंतन चालू करें तो वो डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए। क्योंकि जब तक स्टूडेंट खुद खड़ा नहीं होगा तो वो लाइफ में कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, और डिपेंडेंट वाला हमेशा मार खाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें उनको इतना तैयार कर देना है कि जब कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए वो अपना डिसीजन ले और क्विक काम करे। उसका मेडिटेशन भी इतना अच्छा फास्ट काम करे कि उसको कोई रेड लाइट और गीत का कुछ नहीं है, खट से अंदर गया, चालू किया अपना मैकेनिज्म और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसलिए गुरुडम मॉडल खत्म हो गया, अभी इंडिपेंडेंट मॉडल चालू हुआ है। 90 के बाद जो मॉडल चालू हुआ है, हर व्यक्ति क्या चाहता है, मैं खुद करूं। आपने देखा बैंकिंग में क्या आया, पहले चेक लेकर जाते थे, अब कार्ड आ गया, कार्ड डाला मशीन में, पैसा आया और चला, 24 घंटे में कभी भी मैं पैसा विथड्रॉ कर सकता हूं। कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर पे कमांड दी, उसके अनुसार मैं खेलता हूं। इसलिए कंप्यूटर क्यों पॉपुलर हुए बच्चे भी, कि मैं कंट्रोल कर सकता। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, अल्टीमेटली उसको सोचने का इंडिपेंडेंट समय मिले। क्योंकि हर आत्मा को फ्रीडम चाहिए, उस फ्रीडम को हमें देना है, न कि उसकी फ्रीडम को ले लेना है। कभी कभी हम उनकी फ्रीडम्स को ले लेते हैं तो लोग कंप्लेन करते। किसी भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की फ्रीडम को हम परचेस नहीं कर लें, चाहे वो बीके भी बन जाए तो उसकी फ्रीडम को मेंटेन करें। क्यों स्टूडेंट टूट जाते हैं? क्योंकि हम उनकी फ्रीडम को ले लेते हैं। कई जगह से कंप्लेन आती है, डॉक्टर्स एक सिंगला है वो बता रहे थे कि बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए, फिर क्या हुआ कि डॉक्टर्स धीरे धीरे कम हो गए और फिर खत्म हो गए। क्या हुआ कि बार बार उनको फ्रीडम की उनको ले ली जाती थी। तो वो डॉक्टर कहते थे हम इतना बिजी हैं, ये हैं, हर दिन हम नहीं आ सकते और आप प्रेशराइज करोगे तो हम आएंगे ही नहीं। इसीलिए कभी भी इंटेलेक्चुअल को प्रेशराइज नहीं करो। उनको आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, आए या ना आए, एक दो बार फॉलो अप कर लिया, पर बार बार आप उनको प्रेशराइज करेंगे और उसने अनुभूति नहीं की तो वो नहीं आएगा। तो इसके बजाय हम उनको अनुभूति कराने का करें और हमेशा ये सोचो कि मुझे दूसरों से सीखना है, दूसरों से सीखना है, किसी की सुनो भी। जब आप लोगों से बात करते हो उन बड़े लोगों की सुनो, और उनके पास भी कई अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, आप उनसे सुनते हो तो आप उसको अपने लेक्चर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। होता क्या है कि जब हम सुनते हैं तो एक प्रैक्टिकल मॉडल यहाँ का लेकर दूसरी जगह सुनाते हैं तो लोगों को अच्छा असर आता है। और आजकल जितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दोगे वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है कि ये हुआ, ऐसा हुआ और उसके कारण ये हुआ। तो आपने उस प्रैक्टिकल लेक्चर को आपने दिया तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। जैसे अमेरिकन ऑथर्स का सीक्रेट क्या है, उनकी टोटल बुक्स में क्या रहता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहते हैं। जैसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने सिंक्रोनोसिटी के ऊपर कितना अच्छा बताया कि वो इंग्लैंड गए, होटल में ठहरे हुए थे, बहुत ठंड थी, 7 बजे, एसटीडी काम नहीं कर रहा था, तो वो सामने वाले बूथ पर गए, नीचे उतरकर बूथ में फॉग जमा हुआ था, फोन पे बात कर रहे थे, एक हाथ से फॉग दूर कर रहे थे, तो बाहर से एक लेडी का चेहरा दिखा, लेडी ने कहा ओ दीपक यू आर, तो वो लेडी को बाहर फोन करके जब आए तो वो लेडी उनकी दोस्त थी पहले की, दोनों ने बात की, कोई प्रॉब्लम था वो उनके घर पे गया, वो बच्ची उनकी थी, बच्ची कुछ प्रॉब्लम कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा तू चुपचाप जाके बैठ जा। जैसे ही बच्ची जाके कुर्सी पे बैठी तो रिमोट कंट्रोल नीचे दब गया, सामने टीवी पे ऑन हो गया, टीवी पे वही शो आया जिसका वो डिस्कशन कर रहे थे। तो सिंक्रोनिसिटी से क्या होता है, व्यक्ति जुड़ता जाता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, और जब व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसका असर अच्छा आता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आप कलेक्ट करो, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका रहता है जहां आप जाओ, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप लिखते जाओ लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं। मदर फादर हैं, बच्चा मस्ती कर रहा है तो क्या कर रहा है, मदर क्या कर रही है, उसको कैसे रिएक्ट कर रही है, वो लिखो। और वही एग्जाम्पल लोगों को दोगे तो वो लोग कहेंगे कि ये हमारे साथ होता है। जैसे एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो एक लेडी बच्चे के साथ थी और दूसरी लेडी भी एक बच्चे के साथ थी, और दोनों बच्चे शैतानी कर रहे थे। एक मदर का नेचर क्या था, टोटल कंट्रोलिंग नेचर था, तो वो बच्चे को डांट देती थी, ऐसा मत कर, वो मत कर, ये मत कर, और बच्चा क्या करता था, जैसे ही माँ उसको डांटती थी चुप हो जाता था, जैसे ही मदर दूसरी तरफ देखने लगती थी फिर शैतानी करने लग जाता था, दूसरे की माँ क्या कर रही थी, खेलने दे रही थी, छोटा बच्चा है ये है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप लिखो, और जो भी हीलिंग वाले आपके एग्जाम्पल्स हैं उनको कलेक्ट करो और उनको लोगों को दो कि देखो माइंड का इफेक्ट शरीर पे क्या होता है। अच्छे अच्छे आपने एग्जाम्पल दे दिए तो लेक्चर फिर बहुत कम देना पड़ता है, एग्जाम्पल से लोग ज्यादा समझ लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमेशा अच्छा रखो। अच्छे स्पीकर के लिए यही रहता है, वो हर व्यक्ति को ऑब्जर्व करे। हम भी क्या करते हैं यहाँ बैठकर मधुबन में, ये एक अच्छा अनुभव रहता है कि यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, बाहर वाले भी आते हैं, अपने भाई बहन भी आते हैं। हम ऑब्जर्व करते रहते हैं कौन यहाँ मकान ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, फोन पे क्या बात कर रहा है, ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, कैसे चल रहा है, जूते कहाँ छुपा रहा है। अब वो सब करते हुए हम वही चीज उनको बोलते हैं तो वो कर ही रहा है, तो उसको पता लगता है कि हाँ ये तो मैं कर ही रहा था। जैसे कल माताओं को कहा चप्पल कहीं छुपा देती हैं, ढूंढती हैं और पैर स्लिप होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। 10 में से 8 माताओं के फ्रैक्चर यहाँ होते हैं, भाइयों के कम होते हैं। अब हमने देखा क्यों माताओं के ही ज्यादा होते हैं, भाइयों के नहीं होते हैं, क्योंकि माताएं जल्दी 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 4 बजे आएंगी, फिर जाएंगी और योग में रहेंगे, पांव कहीं और रख देंगे। तो इसीलिए माताओं को कल बोला कि योग करो पर पांव जमीन पे रखो। तो आप वही चीजें ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अपने भाई बहनों के क्या प्रॉब्लम है वो देखो और उनको बताओ कि हमारे भाई बहनों के स्ट्रेस क्या है, हमारे भाई बहनों की टाइप ए पर्सनालिटी क्या है, बाहर वालों की पर्सनालिटी क्या है। दोनों को स्टडी करो और दोनों के अनुसार लेक्चर दो। कभी ये नहीं, कभी कभी क्या होता हम सोचते हैं हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमारा बिल्कुल टोटल कोई गलती नहीं होती, हम अपने को बिल्कुल अपने दूसरों से अलग करते हैं और उसमें मार खाते हैं। गलतियां दोनों से होती है, चाहे वो मेडिटेटर्स है या बाहर वाला है, पर हमें दोनों का बैलेंस करके बोलना पड़ता है कि कहां मिस्टेक करते हैं, हमें उसको कैसे करेक्ट करना है। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड लेक्चर हो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना हो। जितना आप उसको सॉल्यूशन देंगे, जैसे स्ट्रेस के ऊपर लेक्चर देना है और आप दिए जा रहे हो 1 घंटे तक, तनाव इससे होता है, इससे होता है, इससे होता है, 1 घंटे के बाद क्या होगा, सबका सिर ऐसा हो जाएगा और तनाव बढ़ गया। पर आपके पास समय 40 मिनट है और आपने 40 मिनट खत्म कर दिए, केवल तनाव क्यों होता है, तो उसको सॉल्यूशन क्या मिला। अब आपके पास अगर 15 मिनट है, 20 मिनट है, आप सॉल्यूशन पे सीधा आ जाइए, सीधा उनको सॉलिड ठोकिए कि 20 मिनट में वो आपके साथ जुड़ जाए, क्योंकि हर जगह समय अपने आप वो देते हैं। कई जगह आपको ज्यादा मिला, कई जगह रोटरी क्लब में बोलते हैं 15 मिनट में बोलो, 5 मिनट में बोलो। अब 5 मिनट आपके इतना सॉलिड होना चाहिए कि 5 मिनट बाद वो बोले कि हमें लंबा लेक्चर दीजिए। आपको थीम अगर पल्स पकड़ना आ गई और सॉलिड शब्द यूज करिए, 5 मिनट में मुझे एक मैसेज इनको क्लियर कर देना है, उस समय डिटेल में नहीं जाइए, 5 मिनट ऐसा सॉलिड सिक्सर मारिए, फोरर मारिए, उस समय एक एक रन से नहीं जाइए कि एक एक रन बनाए फिर बोलूंगा मैं, सीधा आप सॉलिड बोलिए। और एक जो मिस्टेक करते हैं कि कभी भी शुरू में नेगेटिव वर्ड से शुरू ना करें, मुझे तो मालूम नहीं था, मेरे को तो इतना आता नहीं है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं फिर भी आपके सामने आ गया हूं। कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट न दें। जैसे ब्रह्मा कुमारी इसका भी परिचय देना है तो परिचय पहले से लिखिए, अच्छा लिखिए, ऐसा नहीं खड़ा सबसे कमजोर को सब समझते हैं अरे ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय कोई जरूरी नहीं है, मैं ऐसे ही बोल दूंगा। और सबसे ज्यादा मिस्टेक उसी में ही करते हैं, क्योंकि पहला स्पीकर जो आता है वो ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय देता है और पहला ही परिचय गलत गया तो बाद वाले स्पीकर की भी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जो ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय दे रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया तो आपका पूरा कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है। इसलिए उसकी भी सॉलिड तैयारी करो कि ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय कैसे दें। आप आ गए, पहला ही सेंटेंस आप बोल रहे हैं 1937 में सिंध पाकिस्तान में इसकी स्थापना हुई थी। अब क्या हुआ, मैसेज क्या गया, पाकिस्तान, तो आपका रिजेक्ट हो गया। कुछ लोग नहीं सुनेंगे तो वो तो ठीक है, पर जो सुन लेता है वो समझता है ये कोई बाहर का ऑर्गेनाइजेशन है। आप क्यों बोलें, हम ऐसा बोलें 1937 में इसकी स्थापना हुई, माउंट आबू इसका हेडक्वार्टर है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं। जब वो बाद में समझ लेगा खुद ही उसको नॉलेज हो जाएगा, पर पहला ही सेंटेंस ये बोल दिया तो वो नेगेटिव हो गया। तो सॉलिड स्टार्ट करो। और दूसरा, हमारे इतने स्टूडेंट हैं, 3 लाख स्टूडेंट हैं या 5 लाख स्टूडेंट हैं। अब ये भी मीडिया के सामने नेगेटिव खबर है, यानी बहुत बड़ी खबर नहीं है। 5 लाख क्या होते हैं, करोड़ इतनी जनता है, कई गुरुओं के फॉलोअर्स करोड़ में हैं, और हम उनको बोलते हैं 5 लाख है तो आप और अपने को डिप्रिशिएट कर रहे हो। उसकी जगह बोलो हमारे लाखों स्टूडेंट हैं जो सेंटर्स पे भी आते हैं, घरों में भी मेडिटेशन करते हैं, गिने थोड़ी हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स से कभी भी स्टार्ट न करिए, सॉलिड चलिए और उसी स्टेटमेंट को अच्छा बना के दीजिए कि ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही है। नहीं तो केवल लोगों को क्या पता लगता है, शहर के शहर में ये तो केवल बस आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं, खाना छुड़वाते हैं और घर छुड़वाते हैं, बस यही। वो हम न करें, हमारे मॉडल अच्छे हों, अच्छा सा परिचय दो, कितनी अच्छी सेवाएं करते हैं, आदिवासी की करते हैं, मरीजों की करते हैं, सोशल सेवाएं करते हैं, उनको लिखिए और उनको हाईलाइट करिए, बजाय हम उस समय थ्योरी को दें। वो थ्योरी को भी कैसे दें वो पहले से आप लिखिए, वो आपको लिखना पड़ेगा कि ब्रह्मा कुमारी इसका भी परिचय कैसे देना है और कैसे स्टार्ट करना है। अब आ जाता है नेक्स्ट पोर्शन डिलीवरी का। पहले हो गया हमारा प्रिपरेशन कर ली, बिगिनिंग कर ली, और जब कभी भी बिगिनिंग करो हमेशा अच्छी करो। अच्छी कहानी, जैसे डॉक्टर गिरीश पटेल कोई अच्छी कहानी सुनाते हैं या अच्छा स्टेटमेंट देते हैं, तो जिससे ऑडियंस आपसे जुड़ जाए। क्योंकि पहले पहले जब व्यक्ति आता है और लेक्चर शुरू करते हैं तो लोगों के दिमाग इधर उधर भागते रहते हैं, माइंड क्या बोलेगा, क्या होगा, और जैसे ही आपने एक पावरफुल स्टोरी दे दी तो वो जुड़ जाता है, इमोशनली स्टोरी। कई अच्छी स्टोरी डॉक्टर गिरीश पटेल सुनाते हैं, आप ले लेना, लिखना, और जो भी आपका लेक्चर है उसको अगर वो स्टोरी जुड़ती है उससे स्टार्ट करना, या किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा बोला है स्टेटमेंट उससे स्टार्ट करना। तो पहला पोर्शन हमारा अच्छा चले, बिगिनिंग, और फिर हमारे डिलीवरी के समय अच्छा भी दिखे, जो डॉक्टर डॉक्टर जैसा दिखे, इंजीनियर इंजीनियर जैसा, टीचर टीचर जैसा दिखे, ठीक से दिखे। क्योंकि कभी कभी हम अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखते और ऐसे ही चले जाते हैं, तो उसका भी इफेक्ट हॉस्पिटल में हो, आप HOD हो और आप ऐसे ही चले गए हॉस्पिटल में लेक्चर देने के लिए, तो वो भी अच्छा नहीं दिखता है, उससे भी लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो कम से कम डॉक्टर जैसा जरूर दिखें, ठीक से जाएं और ठीक से ड्रेस पहन के नेचुरल नेचर में रहें। जितना हमारा फ्लेक्सिबल नेचर होगा, इजी होगा, उतना हमारा ये कंप्यूटर अच्छा काम करेगा। हमारा ट्रेड सीक्रेट क्या है, ये कंप्यूटर है आत्मा वाला, ये जितना रिलैक्स होगा उतना सिग्नल आप कैच करते जाओगे, उसको जोड़ते जाओगे। डिलीवरी तो बहुत कम काम करती है, वो तो हम केवल देख लेते हैं, पर जो आपके अंदर का फ्लो एक बार चालू हो जाए वो फिर आप बोलते जाते हैं। जैसे हम सभी ने देखा दीपक चोपड़ा आराम से खड़ा होकर 6-6 घंटे बोल रहा था, उसके फेस को मैं देख रहा था, कोई स्ट्रेस फेस पे नहीं आता था, बहुत अच्छी चीज भी बहुत अच्छे वे में बोल देता था, मुस्कुरा देता था, और कंटिन्यू उसका फ्लो था। क्योंकि मैंने देखा उसने अपनी ड्रेस भी नेचुरल इजी पहन रखी थी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूँ या बहुत टाइट हो गया, बिल्कुल नेचुरल खड़े होके एक ही स्टाइल में खड़े होके डिलीवरी कर। तो सीक्रेट क्या है, जितना आप इजी रहते हैं, अपने इमोशंस का बैलेंस रखते हैं, उतना आपका डिलीवरी सिस्टम अच्छी तरह काम करता है, नेचुरल चलता है। ये कंप्यूटर जो भगवान ने दिया आत्मा का, उसमें फ्लो चलता जाता है, उसमें सिग्नल आते हैं, और इसका जितना यूज करेंगे उतना आपकी स्पीच में कमांड आएगा। जितना इसके अंदर जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, उतना आपकी क्लियरिटी रहेगी और आपका फ्लो बना रहेगा। जो भी पोजीशन आपको चाहिए उस पोजीशन में बोलें। अगर आपको लगता है बैठकर मैं कंफर्टेबल हूं, बैठकर बोलें, खड़े होके बोलना है तो खड़े होके बोलें। ये हर एक का अपना अपना डिलीवरी सिस्टम रहता है, वो आप अपनी पर्सनालिटी में देखें। जैसे मेरे को नेचुरल लगता खड़े होके बोलना, तो मैं नेचुरल होके बोलूंगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ठीक करें। जो हमारे साइंस हैं लेक्चर डिलीवरी करने के, उसमें हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ये भी रहता है कि हम क्या उनको बता रहे हैं। हार्ट है तो आपने बताया हार्ट ऐसा काम करता है, तो आपने बताया। आप कैसे एनर्जी जा रही है तो ऊपर से आपने बताया कि नीचे एनर्जी जा रही है, तो आपकी लैंग्वेज भी आपके वर्ड के साथ चले, दोनों का सिंथेसिस हो, तो तब उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। अगर केवल ड्राई ड्राई लेक्चर देते हैं तो वो भी कभी कभी काम नहीं करता है, लोग सो जाते हैं। तो आजकल क्या है, आपको एनर्जी बढ़ना है तो खड़े होके बेटर है, कि क्योंकि एनर्जी आप देख रहे हो, लोग सो तो नहीं रहे हैं, आपको फीलिंग आ गई कि लोग सो रहे हैं, तो सब्जेक्ट को आप थोड़ा और चार्ज करके उनके हाथ पांव ऊपर करा दिए, एक्सरसाइज करा दी और फिर चालू किया। तो डिलीवरी के समय आप नेचुरल नेचर में रहिए, आई टू आई कॉन्टेक्ट जरूर बनाइए। आप
जब बात करें लोगों से तो सबसे बात करें, ऐसा नहीं लगे कि एक ही जगह आप खड़े होके बोल गए बस स्टैचू बोल के तो वो कहेंगे इससे आप बात कर रहे हो, हमसे तो कर ही नहीं रहे हो। तो हरेक के साथ आई टू आई कॉन्टेक्ट रहे, जैसे शिव बाबा भी आता है हरेक को करता है ना हेलो, इधर से चार्ज किया, इधर से चार्ज किया, इधर से किया, ऊपर से किया, तो सबसे किया। और वही हमारी जिंदगी है कि हरेक को अपने को इम्पोर्टेंस देना है। जो मैं हमेशा एग्जाम्पल दिखाता हूँ बदक का, बदक कैसे चलती है पानी में तालाब में, उसके पांव नीचे रहते हैं और ऊपर क्या करती है बदक, झाड़ती रहती है अपने पंखों से और इधर उधर देखती रहती है, इधर देखा इधर देखा इधर देखा। तो क्या कर रही है बदक, पैडलिंग नीचे है, पुरुषार्थ नीचे है और ऊपर क्या कर रही है, नेगेटिविटी को झाड़ रही है और सबसे हेलो कर रही है, हेलो हेलो हेलो। ऐसे ही हमारे ज्ञान की लाइफ में भी अंदर का पुरुषार्थ है, बाहर का नहीं है। जितना हम बाहर की शोबाजी करते हैं उसमें हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। अच्छे स्पीकर के लिए उसकी एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है, कहाँ मुझे एनर्जी को यूज करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है छोड़ दो, अगर मेरा काम नहीं है वहां मत जाओ, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करो, अपनी एनर्जी को गेन करो, रोज गेन करते जाओ, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मेरे पैडलिंग होए और किसी को पता भी नहीं लगे कि इसका पुरुषार्थ चल रहा है। नहीं तो क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं, कई लोग आंख खोल के ऐसे हो जाते हैं 8-8 घंटे मेरा योग चल रहा है तो लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या योग कर रहा है। हमारा योग नेचुरल हो, इजी हो, लोगों को पता भी नहीं लगे कि ये योग कर रहा है, अंदर ही अंदर अपनी तैयारी और बाहर से बिल्कुल इजी। इसीलिए मैंने कहा बाहर फ्लेक्सिबल इजी नेचर और अंदर ही अंदर टफ, अंदर ही अंदर अपनी तैयारी करते जाओ, क्योंकि जितनी हमारी तैयारी हो जाएगी बाबा खुद ही हमें चांस देगा। क्योंकि नाटक चल रहा है, नाटक में जैसे जैसे हमारी तैयारी होती जाएगी बाबा आपको रिवील करता जाएगा, आपको चांस नेचुरल मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहीं का वहीं आप देखोगे कि कोई ना कोई आपके पास आके कहेगा आप जैसे ही तैयार हो गए। इसलिए अपनी तैयारी को अंदर ही अंदर करते जाओ, चाहे अभी मुझे मौका नहीं मिल रहा है पर समय आएगा जरूर मिलेगा, वो चांस मिलेगा, क्योंकि बाबा ने ये 6 महीने मुझे दिए हैं अपनी अंदर की तैयारी के लिए, कोई वेस्ट नहीं जाएगा। शांत होकर बैठ जाओ और एक्शन का मौका मिला कर दो एक्शन, नहीं मौका मिलता है अपनी तैयारी जारी रखो। नहीं तो सेवा का भी टेंशन कईयों को आ जाता है, मेरे को सेवा नहीं मिल रही है, मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं। सेवा का अर्थ है कि जो जिस आत्मा को आपकी जरूरत है वो आपको खुद ही कॉन्टेक्ट करेगी, वो सेवा में सक्सेस ज्यादा होगा। हम किसी को क्यों बोले, बाबा को मेरी जरूरत है तो जरूर कहीं ना कहीं किसी आत्मा को कॉन्टेक्ट करेगा और मेरा रोल अगर वहां जरूरत है तो भेजेगा, नहीं है तो बैठे रहो अंदर ही अंदर तैयारी करते रहो। तो वो एक समय आता है जब हम फुल एनर्जी के साथ आते हैं। खेल इसी का है लेक्चर का कि आपकी अंदर की एनर्जी लेवल क्या है, शक्ति क्या है, आप कितने शब्दों को पावरफुल बनाकर भेज रहे हैं, एनर्जी भेज रहे हैं। और पूरा सीक्रेट क्या है कि हमारे संकल्प जितने पॉजिटिव होते हैं, एनर्जी वाले होते हैं, वो कम शब्दों में भी लोगों को असर कर जाता है। जैसे यहाँ अभी दीपक चोपड़ा के समय मैं वहां बैठा था एकोमोडेशन में और फिर मुझे लेक्चर देना था, 20 मिनट 25 मिनट में लेक्चर हुआ। तो वहां के दो भाइयों ने बताया, किचन वालों ने, कि वो दो डॉक्टर पूछ रहे थे, ये डॉक्टर वो तो मुझे जानते नहीं थे, तो ये तो वहां बैठा हुआ था एकोमोडेशन में अपना काम कर रहा था और कहां फास्ट आकर लेक्चर दे के फिर चला गया 20 मिनट में, और कितना पावरफुल लेक्चर था। तो क्या होता है कि जब आप अपने कार्य में ठीक हैं, चाहे 20 मिनट भी देंगे उसका असर आ जाएगा अगर आपका फोकस क्लियर है। इसीलिए अपना फोकस क्लियर करते हैं और विचारों में शक्ति भरते हैं तो वो डिलीवरी हमारा अच्छा होता है। टोन को भी ठीक रखें, कहां टोन को हाई ले जाना है, कहां कम करना है। टोन वॉइस कल्चर एक बार आ जाए, वॉइस को कहां ऊपर ले जाना है, किस शब्दों में वो ले जाना है। अगर आप शांति की बात कर रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं शांति होना चाहिए शांति होना चाहिए, वो कहेंगे आप तो शांति कर लो पहले। तो शब्दों को किस समय हाय करना है और किस समय लो करना है, कुछ चीज छुड़ाना है। नो टू टोबैको, तो आपने उसको हाईलाइट किया कि तंबाकू को छोड़ो, तो आपने वॉइस को ऊपर किया। और जहां आपने उसको अनुभूति कराना है, योग कराना है, फिर से आप अपने अंदर नेचुरल उसमें चले गए और शब्दों को, वॉइस को आपने कम कर दिया। तो वॉइस मॉड्यूलेशन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के इमोशंस जगते हैं। क्योंकि जब तक उसके इमोशन नहीं जगेंगे तो वो सूखा सूखा ही चला जाएगा। गीत भी क्यों गवाते हैं कि किसी ने अच्छा गीत गा लिया तो उसके इमोशंस एक्टिवेट हो जाते होंगे। तो ड्राई लेक्चर नहीं हो, साथ में वॉइस मॉड्यूलेशन हो और ह्यूमर भी हो। आजकल लेक्चर्स में अगर बहुत सीरियस लेक्चर दे दिए तो भी लोग सुनते नहीं है। बीच बीच में कुछ अच्छे ह्यूमर दे दो, जो आप उससे रिलेटेड हो, उससे प्रॉपर जुड़े हुए हो। तो ह्यूमर से क्या होता है, व्यक्ति का हंसना हो जाता है, फिर से सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और फिर ट्रैक पे आ जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति 40 मिनट से ज्यादा नहीं सुन पाता तो उसको बार बार उसके माइंड लेवल पे लाना पड़ता है, अगर वो 1.5 घंटे का है। और अपने चेहरे पर, फेस पर स्माइलिंग हो, चाहे आप योग वाला भी करा रहे हो, सीरियस नहीं हो जाए। ज्यादातर क्या होता है, कई बार हमारे भाई बहन बहुत सीरियस हो जाते हैं तो लोगों को लगता बड़ा डिफिकल्ट है। कमेंट्री भी जब कराओ अच्छी कराओ, पहली बार जब जा रहे हो पब्लिक के सामने, नेचुरल कमेंट्री हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे आप उसको बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, परमधाम सूर्य चांद सितारे से पार अभी उसको नॉलेज है ही नहीं, तो वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक सरमन हो जाएगा। कमेंट्री में भी एक पॉजिटिव कैरेक्टर को लेकर कराइए। हमारा माइंड एक समय पर एक चीज को लेता है। अगर मैं बोलूं मैं शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, क्या हो रहा है, आत्मा ने मैसेज दिया इसको शांति चाहिए, हिप्पोकैम्पस ने फाइल खोलना शुरू की इसको शांति चाहिए। अब जैसे ही फाइल खोलना शुरू हुई इतने में मैंने बोल दिया मैं शक्ति स्वरूप हूं, अभी थोड़ा शक्ति का शुरू हुआ इतने में मैंने बोल दिया मैं आनंद स्वरूप हूं, तो माइंड कहेगा इसको चाहिए क्या, कभी बोलता शांति कभी बोलता शक्ति। तो एक समय पर एक कैरेक्टर को लीजिए, शांति देना है शांति लीजिए, शांति से रिलेटेड कोई अच्छा गीत जो भी आपको लगता है बजाइए, उसको फील करने दीजिए और कंटिन्यूअस नहीं कमेंट्री कराइए। कंटिन्यूअस कमेंट्री कराते जाएंगे तो वो भी मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है फील करते जाए। आपने एक सेंटेंस बोला पॉज, जो डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने बड़ा अच्छा कहा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऑन और ऑफ के बीच में जो गैप है उसको हमें एक्टिवेट करना। उनकी वही सोल है, उस समय आत्मा बात कर रही है, तो जैसे ही हम वो गैप देते हैं उसकी आत्मा चालू हो जाती है बात करना। अगर कंटिन्यूअस ऑन ही ऑन रहेगा तो क्या होगा, उसकी आत्मा उससे बात ही नहीं करेगी, वो मेडिटेशन नहीं है। इसलिए गीत भी वही बजाइए और बहुत गीत भी नहीं बजाइए, नहीं तो कंटिन्यूअस गीत चल रहे हैं 6 से 6:30, वो भी मेडिटेशन नहीं है, वो भी एक सरमन है। एक गीत बजाया आपके ब्रेन ने काम करना शुरू कर दिया और फिर एंड में गीत बजा दिया, उस बीच में उसने फील किया, उस शांति को पूरे शरीर में जाने दिया या अपनी पर्सनालिटी में जाने दिया, तो तब उसका इफेक्ट आता है। एक दिन एक कैरेक्टर को लीजिए, जो भी प्रोग्राम करिए, अगर आपको वो प्रोग्राम लेना है तो उसी प्रोग्राम से रिलेटेड आप स्पीकर्स को सिलेक्ट करिए, उनको पहले से ही बोलिए कि आपको इसी टॉपिक पे सिंथेसाइज करते जाना है। जो चारों स्पीकर हैं आपस में बैठें और क्या क्या शेयर करना है वो पहले से क्लियर हो। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस क्या है एक बोले, ट्रिगर्स क्या है दूसरा बोले, मैनेजमेंट क्या है तीसरा बोले। ऐसा नहीं सब तीनों के तीनों बोले जा रहे हैं वही की वही चीजें, तो सॉल्यूशंस नहीं मिलते। तो पहले से ही हमारी तैयारी करिए। और लास्ट है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, कभी भी सडनली नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन में अब आप क्या देना चाहते हो, उनको मैसेज देना चाहते हो कि वो कुछ इस स्पीच का मैसेज लेके जाए। तो हो सके तो कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया, हो सके तो फिर कोई अच्छी स्टोरी सुनाई, हो सके तो कोई अच्छा कोटेशन दे दिया। तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो कराइए, और फिर अगर आप कंटिन्यूअस करा रहे हैं, नेक्स्ट डे भी करा रहे हैं, तो उनको कुछ होमवर्क दे दीजिए कि जो वो दिन भर वो होमवर्क को लेगा, चाहे आपने बोल दिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान की किरणें मेरे ऊपर आ रही है, आज इसको यूज करना, तो वो आज के दिन उसको यूज करे। उसको कहना लिख लो, या कार्ड है तो कार्ड दे दो उसको, लिख के खुद लिख ले, तो वो दिन भर उसको यूज करे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। दिन में उसने 5-6 बार रिवाइज कर लिया और नेक्स्ट डे आया तो वो काफी हद तक उसके अंदर चला जाएगा। तो कुछ उसको होमवर्क भी करने दीजिए, क्योंकि इंडियंस का नेचर खुद का नहीं रहता, वो लोग कब करते हैं, जब कोई कराए। इसीलिए यहाँ गुरु और टीचर सिस्टम अच्छा चला। कराओ, एक्सरसाइज भी कराओ, खुद नहीं करेगा, कर तो करेगा, तो इसीलिए कराना पड़ता है। क्योंकि बच्चों को शुरू से क्या इंस्ट्रक्शन मिली, उठ ये कर, ब्रश कर, तो बच्चे की आदत क्या हो जाती है, जब तक उसकी माँ नहीं बोले 16 साल का हो गया उठ, सोया रहता है। वो बोलते है उठ तो उड़ जाता है, क्योंकि हम लोगों की कंडीशनिंग बहुत हुई। अभी हमें क्या करना है, उनकी डीकंडीशनिंग करना है कि जिससे उसका अपना सिस्टम चार्ज हो जाए। तो एंड में उनको अपन ने कुछ काम करने दिया, दिन भर वो काम करेगा, जिससे कि उसका खुद का ब्रेन काम करने लग जाए, सोचने लगे, और जब वो सोचेगा तो उसकी ग्रोथ होगी होगी। जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कहा, थिंक थिंक थिंक, थिंकिंग इज द ग्रोथ। सबसे बड़ा ट्रेड सीक्रेट है कि आप उन लोगों को सोचने दो, और सोचेगा तो वो खुद ही खड़ा हो जाएगा। तो ये तीन पोर्शन हो गए, शुरू का स्टार्टिंग पॉइंट, चाहे कुछ अच्छी आइस ब्रेक से करो, वो मेथड आप सीख सकते हो, आइस ब्रेकिंग डॉक्टर गिरीश पटेल अच्छा कराते हैं, वो आपको करा देंगे कि डिफरेंट आइस ब्रेक भी कर सकते हो। वो देखना चाहिए कि किस तरह का क्राउड है, बहुत मैच्योर्ड क्राउड है, किस तरह का आइस ब्रेक कराएं, मीडियम है तो किस तरह का कराएं। ये टेक्निक्स आपको धीरे धीरे कराते कराते खुद ही आएगी, और जितना आप कराएंगे उतना सीखते जाएंगे, और जितना सीखते जाएंगे उतना आपका वॉक्यूबलरी सिंथेसिस बढ़ता जाएगा। एक शब्द को कैसे बोलना है, उसको कैसे डिफरेंट लैंग्वेज यूज करना है, जैसे कर रहा था डॉक्टर दीपक चोपड़ा, बोल कॉन्शियसनेस पे ही रहा था, पर उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो धीरे धीरे आता जाता है। और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखो, एक अच्छा किस्सा उसने बताया कि दो जैन डिसाइपल झंडे को देख रहे थे, एक ने बोला झंडा हिल रहा है, एक ने बोला हवा चल रही है। तो मास्टर ने कहा ना हवा चल रही है ना झंडा हिल रहा, इट इज कॉन्शियसनेस मूविंग, इट इज द कॉन्शियसनेस मूविंग। तो कितना गहरा आंसर उसने दिया। और ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सूफी माइथोलॉजी के थे, उसने बहुत 3-4 अच्छे दिए, ऐसे पकड़ लो और एक अच्छे एग्जाम्पल को एक समय पे यूज करो, तो आपका लेक्चर वो 40 मिनट का अच्छा इम्पैक्टिव हो जाता है, और वो आ जाता है आपको कराते कराते। 6 घंटे में उसने क्या बोला वो पकड़ लो, आधे घंटे की अच्छी चीजें जो अपने काम की है उसको लिख लिया, उसको रिवाइज कर लिया, और उसको बोलना शुरू किया। स्टोरीज कोई अच्छी मिली आपको, एक बार शेयर की, दूसरी बार शेयर की, वो स्टोरी आपके अंदर चली गई। देखो, भगवान के ऊपर विश्वास, परमात्मा के ऊपर निश्चय। तो बहुत अच्छी स्टोरी उषा बहन ने मुझे दी, उसको मैंने 6 जगह यूज की, अब वो अंदर चली गई। कि मुल्ला नसरुद्दीन की शादी हुई, नाव में बैठे थे, इस पार से उस पार जा रहे थे, तो बीच में बहुत हवाएं आने लगी, तूफान आने लगा, तो उसकी वाइफ घबरा गई। उसने मुल्ला नसरुद्दीन को बोला कि आपको डर नहीं लग रहा है क्या? तो बोला नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। उसने चाकू निकाला अपने कमर से, वाइफ के गर्दन के ऊपर रख दिया, बोला डर लग रहा है क्या? तो उसकी वाइफ कहती है कि चाकू चाहे कितना भी तेज है, खराब है, पर जो पकड़ा हुआ है वो तो मेरा पति है, वो तो मेरे को प्यार करता है। चाकू खराब है पर पकड़ने वाला मेरा पति है। तो इसी समय नसरुद्दीन ने कहा, देखो तूफान कितना भी खराब है पर उसको चलाने वाला कौन है? मेरा पिता परमात्मा है, उसको मेरे से प्यार है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो कैसा मैसेज को आपको कन्वे करना है, वो एक अच्छी स्टोरी को कलेक्ट करके वो आप रख लीजिए और उसको यूज करिए। और आपने एक दो अच्छी मैसेज दे दिया, व्यक्ति खुश हुआ, अंदर से हंसा, उसका टेंशन कम हुआ, तो नेक्स्ट डे भी वो आपके साथ चलेगा। तो बहुत सीरियस नहीं बन जाना है, दोनों का बैलेंस रखना है, बहुत सीरियस भी नहीं और बहुत हंसे भी नहीं, बीच का बैलेंस करते रहें। लोग हंसे, अपन चुपचाप चलते रहें, लोगों को हंसाना है और अपन नेचुरल चलते रहें। बिल्कुल नेचुरल चलते रहेंगे तो लेक्चर आपका नेचुरली चलता रहेगा, क्योंकि इस आत्मा में इतनी शक्ति है, इतनी कैपेसिटी है कि ये सिग्नल्स को कैच करती जाती है। हमें तो मोस्टली क्या होता है, जब हम कुछ विड्रॉ करते हैं, अपने आप में बैठे रहते हैं, ट्रेन में जाते हैं, जैसे ही कुछ सोचना चालू करते हैं, बहुत अच्छे सिग्नल चालू हो जाते हैं और उसको लिखना हम शुरू कर देते हैं, डायरी रखते हैं, उसमें लिखना शुरू कर देते हैं कि कैसे इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, जिसको कहते हैं लैटरल थिंकिंग। एक बात को अगर आप अलग तरीके से समाज के सामने रखते हैं तो वो लोगों को अच्छी लगती है। चाहे गॉड के 3 शब्द हैं, GOD, आप उसको कैसे बोलते हो वो आपके हाथ में है। तो ये लैटरल थिंकिंग करना आ जाना चाहिए और उसके लिए चाहिए समय। हर दिन अपने को 1 घंटा जरूर दें, मुरली योग को छोड़ के 1 घंटा हर एक को कंपलसरी खुद को दे। और जब हम खुद से, खुद की आत्मा से बात करते हैं तो वह आत्मा बात करना शुरू कर देती है, आत्मा ही चालू हो जाती है, क्योंकि वो सिग्नल पकड़ रही है कॉस्मोस से और हम उसको केवल एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने कहा, मैं किताब भगवान लिखता है, मैं रॉयल्टी कलेक्ट करता हूं। तो वही चीजें मैं वो कराने वाला है और मैं कर रहा हूं। तो जब हम निमित्त करके बनते हैं और जब हम बैठते हैं, गीत शुरू होता है, पहली चीज हम इस कंप्यूटर में डालते हैं, मैं निमित्त हूं, मैं निर्माण चित्त हूं, मैं निस्वार्थ सेवा करने आया हूं, मेरा कुछ नहीं है। और जैसे ही आपने सेवा की, डिटैच हो जाओ, उससे छूट जाओ, उसको पकड़ के नहीं रखो। फिर अगर पकड़ के रखते हैं तो अभिमान आता है और फिर हमारी एनर्जी लेवल ब्लॉक होना शुरू होती है। जैसे ही ट्रेन में गए, बैठे, भूल गए कहां मैंने सेवा की, क्या बोला, खत्म हो गया। तो डिटैचमेंट भी करना आना चाहिए। तो 1 घंटा रोज खुद को दें और उस समय लैटरल थिंकिंग शुरू करें कि इस शब्द को मैं कैसे अच्छी तरह बोलूं, इसके क्या डिफरेंट मीनिंग है। जैसे उसने बहुत अच्छा बताया, लास्ट करके खत्म करते हैं, उसने कहा ये क्या है, दीपक चोपड़ा ने पूछा, लोगों ने कहा टेबल है, बोला और क्या है, टेबल के और गहराई में जाओ, क्या है, हाँ बताइए क्या है टेबल, लकड़ी है, लकड़ी कहाँ से आई, जंगल से आई, जंगल में किसने इसको, लकड़ी को लाके किसने उसको किया ठीक, कारपेंटर ने, कितना अच्छा फिनिशिंग किया। तो वो एक एक चीज को गहराई पर ले जाता था और हर चीज को वो जोड़ता था, 5 तत्वों से जोड़ता था कि अल्टीमेटली जो चीज यहाँ है वो रियल नहीं है, वो कहीं ना कहीं से आई है, तो उसको पकड़ना है न कि इसको देखना है। इसीलिए कहा कि डू नॉट बिलीव ऑन योर सेंसेस, जो आप देख रहे वो नहीं है और जो नहीं देख रहे वो है और उसको पकड़ना है। तो लैटरल थिंकिंग आप जितना करेंगे उतना उसी लेक्चर को क्रिएटिव बनाकर लोगों को देंगे। एक कोई भी कुछ कर रहा है लेक्चर, आप उसको अपना इनपुट डालिए, मैं इसको कैसे अच्छा बना सकता हूं, तो वो लेक्चर अच्छी तरह से लोगों को समझ में आता है। जरूरी नहीं कि मैं इसकी कॉपी वैसी की वैसी करूं, वही एग्जांपल दूं, आप अपने एग्जांपल क्रिएट करिए और उसको नेचुरल वे में प्रेजेंट करिए। ओम शांति। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इसी सब्जेक्ट पर, डीकंडीशनिंग, वो बाद फिर, काफी अच्छा सब्जेक्ट है, फिर बता देंगे बीच में जैसे समय मिलेगा। शायद डॉक्टर गिरीश पटेल भी वो मेडिटेशन, साइंस ऑफ मेडिटेशन में डीकंडीशनिंग का बता देंगे कैसे करना। दोनों रहता है, इनबॉर्न भी आत्मा संस्कार लेके आती है और आप डेवलप भी कर सकते हो। इसीलिए कहा गया ना, विनर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। हर कोई लेके नहीं आता है, पर अपने को उसको डेवलप करना पड़ता है। हम सब खुद के लाइफ में भी देखें कि बाद में आए ना, जब यज्ञ में आए तब ये हमारा कल्टीवेट हुआ, उसके पहले तो थी नहीं। तो यहाँ आने से जो कल्टीवेट हुआ, क्योंकि आत्मा का खुलना चालू हो गया, जो हम खोल नहीं रहे थे अंदर ही अंदर। और एक बार आत्मा को खोलना चालू हो जाता है तो आत्मा एक्सप्रेस करती करती है। आत्मा का नेचुरली नेचर है एक्सप्रेस करना ही। एक बार आप उसकी फ्रीडम मेंटेन करो, उसको बांधो मत। इसीलिए बाबा का जो शब्द बहुत अच्छा है, जो डॉक्टर दीपक चोपड़ा लोकल एंड अनलोकल कर रहा था, हद और बेहद। जितना आपकी बुद्धि बेहद में जाएगी उतना आपका सिंथेसिस बढ़ता जाएगा। हदों में हम फंस जाते हैं, उसमें ही मैच हारते हैं। जहां देखो किसी भी चीज को देखो, बेहद में देखो, बेहद में जाओ, बेहद में जाओ, तो तब आपके अंदर टीम स्प्रिट आएगी। और सबसे अच्छा है हमारा टीम बनाइए। हेल्थ के प्रोग्राम करना है, एक्सरसाइज वाले को ढूंढिए, होम्योपैथिक को ढूंढिए, आयुर्वेदा को ढूंढिए, मेडिटेशन, छह जने जाएं, एक ने एक्सरसाइज कराई, एक ने कुछ होम्योपैथिक का बताया, एक ने आयुर्वेदिक कंसेप्ट बताया और एक ने मेडिटेशन। इतनी अच्छी पावरफुल टीम हमारी बनना चाहिए। उसी के लिए ये मीटिंग की है कि हमारी रीजनल लेवल पे टीम्स तैयार होते जाएं। तो अगर एक एक रीजन में अच्छी पावरफुल टीम हो जाएगी तो वो टीम वहीं जाके उस एरिया को कवर करती जाएगी, तो हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो टीम क्रिएशन भी करें, जो सेंटर्स पे रहते हैं स्टूडेंट्स का यूज करें, उस स्टूडेंट की क्या खूबी है उसको जोड़िए, तो हरेक की खूबी मिलती जाएगी, तो छह खूबियां मिलेगी तो वो लेक्चर पावरफुल होता जाएगा। उसको धीरे जितना योग से आएगा वो तब आता है, टोन तब फास्ट होता है जब हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो पहले का ज्ञान हम देते थे, काय पे देते थे प्रूव करके, नहीं आत्मा है ही, शरीर नहीं है। अभी हम क्या कहते हैं, पहले कमेंट्री में बोलते थे ना, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, अब क्या बोलते हैं, मैं आत्मा हूं, अब शरीर बोलना ही नहीं है। तो प्रूव नहीं करें कि यही है। जहां प्रूव करने का नेचर खत्म होता आपका वॉइस कल्चर चालू हो जाता है। मुझे कोई भी चीज प्रूव नहीं करना है जज, मैं यहां लेक्चर देने नहीं, ना कोई प्रूव करने आया हूं, ना डिसप्रूव ना प्रूव। तो फिर हमारा वॉइस कल्चर चालू होता है। ज्यादातर नुकसान इसी में होता है, लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं ज्ञान को। जो खुद का कनेक्शन प्रूव कर रहे हैं ना, वो क्यों कम सुनता है, क्योंकि वो खुद को हमेशा प्रूव करने को चाहता है। जो कल मैंने बताया कि आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पास्कल ने कहा था कि आदमी को शांत रहना नहीं आता। वो शांत क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो प्रूव करना चाहता है। जो बाबा कहता है मैं और मेरापन, ये छूट जाता है मैं और मेरापन, तो फिर आपका नेचुरल आत्मा बात करती है। अभी वो मेरी एक्वायर्ड पर्सनैलिटी बात कर रही है, मैं ये हूं मैं ये हूं, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, आत्मा बात कर रही है। तो प्रूव नहीं करें और डिसप्रूव नहीं करें किसी को, किसी को भी डिसप्रूव नहीं, किसी को भी प्रूव नहीं। जो आपके अंदर फ्लो चल रहा है उसको आप बोल रहे हैं लोगों को, तो आपका खुद ही नेचुरल कमांड चलता रहेगा। ये भी फिर गहरा सब्जेक्ट है, इस पे फिर अच्छी तरह, कब गिरीश भाई आप बताएंगे ना साइंस ऑफ मेडिटेशन में, नहीं इंटेलेक्ट तो देखते हैं कौन से गैप में बताएं, जब गैप मिलेगी तो तब बता देंगे कैसे वो काम कर रहा है। फिर क्या डायग्राम के साथ बताएंगे ना तो बेटर रहेगा वो। जनरली इसको आप सिंपल ले लो कि अपनी आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों तीनों फैकल्टीज ब्रेन के द्वारा काम करती। ब्रेन अपना हार्डवेयर हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया। तो माइंड क्या करता है, विचार पैदा करता है, विचार एनर्जी लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन के द्वारा हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है, नर्वस सिस्टम थ्रू PNI, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। हर विचार एक एनर्जी को लेकर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन के द्वारा जाता है और बायोलॉजिकल चेंजेस लाता है। साइकोलॉजी डिमांड्स एंड बायोलॉजी रिस्पॉन्स। साइकी क्या करती है, डिमांड क्रिएट करती है सॉफ्टवेयर में, आत्मा जैसे मन डिमांड कर रहा है, और वो बायोलॉजी जाके चेंज होती है हमारे टारगेट ऑर्गन्स में। इसीलिए कहते हैं ना कि पूरा हीलिंग का खेल काय के ऊपर डिपेंड है, अपने माइंड के ऊपर डिपेंड है। अगर माइंड के सॉफ्टवेयर को अपन ने चेंज कर दिया तो मैटर फॉर्मेशन भी अच्छा ही होगा। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सब बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। ये कहां से गवर्न हो रहे हैं? साइकी से हो रहे हैं। जैसे मैं ट्रैफिक में फंस गया, रेड लाइट है और समय है अभी आधा घंटा ये ट्रेन पकड़ने का, और ट्रैप है बिल्कुल, मैं निकल नहीं पाऊंगा, तो मेरी साइकी क्या करेगी? अब तो हो गया, अब तो जा नहीं पाऊंगा, अब तो मिस होगी। तो सब यहां चेंज हुआ तो यहां भी क्या होगा? चेंज चालू हो गया, एड्रिनल में मैसेज गया, स्ट्रेस हार्मोन पैदा हुए, ब्लड प्रेशर बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ी, डर लगा तो कुछ और चेंजेस आ गए, शॉक में आने लगा। तो कहां प्रॉब्लम था? यहां जब मैंने जैसे ही बोला कि नहीं ठीक है, मेरा काम नहीं है, बाबा के काम पे जा रहा हूं, तो सब साइकी चेंज हुई तो बायोलॉजी भी चेंज हुई। तो ये दोनों का खेल चलता रहता है, और खेल चालू होता है आत्मा के कन्फ्लिक्ट से। मन और बुद्धि में जब झगड़ा चालू हो जाता है, मन कुछ बोल रहा है, बुद्धि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो कन्फ्लिक्ट हुआ। इसीलिए दोनों की दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, मन सोचे बुद्धि करे। बुद्धि क्या कर रही है? मन को बार बार प्रेजेंट में ला रही है। मन भाग रहा है, मन का काम ही क्या है? थॉट्स पैदा करना, भागा, आगे भागा, पीछे भागा। बुद्धि क्या करती है? उसको हैंड ब्रेक लगा के वर्तमान में लाती है। मेडिटेशन का भी अर्थ क्या है? बार बार अपने मन के विचारों को वर्तमान में लाना, जैसे ही भागे लाओ। और जब हम वर्तमान में आ जाते हैं तो हमारा डर खत्म हो जाता है। वहां रहते हैं फ्यूचर में तो डर होता है, पास्ट में रहते हैं तो गिल्ट आता है, वर्तमान में रहते हैं तो हमारी एनर्जी लगना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों का खेल चलता है, और उसको अच्छी तरह पढ़ो। मैंने इसीलिए कहा कि पहला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका फर्स्ट लेसन क्लियर होता है उसको लेक्चर, कोई भी लेक्चर दे सकता है, पूरा हमारा प्रोजेक्शन। देखो दीपक चोपड़ा का भी टोटल लेक्चर क्या था? 6 घंटे का कॉन्शियसनेस पे था, पर उसने इतना अच्छा मास्टरी कर लिया था कि उसको एक्सपांड किया उसने 6 घंटे तक उसी कॉन्शियसनेस को। तो इसी तरह से हम भी अगर थोड़ा पढ़ें, उसको समझें, तो ये पूरा खेल जो मन बुद्धि का चलता है उसको समझ लें, तो फिर आपकी क्लियरिटी बिल्कुल आ जाएगी, योग करना भी इजी हो जाएगा। ये क्लियर नहीं है आत्मा के कैसे 7 गुण काम कर रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर, कैसे हील कर रहे हैं, कैसे बीमारी कर रहे हैं, वो क्लियरिटी आ जाए तो आप वही लेक्चर में उनको अपन लेते हैं। मेरे ख्याल से उसके लिए फिर समय अलग से अपन देखते हैं कब मिलता है। तो ये खेल जो आत्मा और शरीर का है, गिरीश और हम कोशिश करते हैं कि कैसे उसको हम दें, कुछ डॉक्टर गिरीश दें, कुछ मैं दूं जो मैंने समझा है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हेल्प किया मुझे एक किताब, पॉजिटिव थिंकिंग वाली एक किताब थी पहले, वो हाँ नहीं वो अपनी थी, नहीं वो नहीं अपनी थी, और वो नहीं पॉजिटिव है ही नहीं, वो अवेलेबल नहीं है, बहुत कम कॉपी थी। उसको मैंने 6-7 बार पढ़ा था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा क्लियर किया है मन बुद्धि संस्कार को। हॉलैंड की किताब थी पॉजिटिव थिंकिंग की, तो उसको बहुत अच्छा मैंने 6-7 बार पढ़ा, उससे क्लियरिटी आई, तो दूसरे लेक्चर का डेवलप अच्छा हो गया। तो वो हम कोशिश करेंगे कि कैसे मन बुद्धि काम कर, हाँ तो वो देख लेंगे जैसे सेटिंग हुआ। गिरीश भी कोशिश करेंगे क्योंकि उनको भी काफी गहरा अनुभव है, और जो मेरे को मालूम है मैं भी कोशिश करूंगा उसको देने।